गाथा में आप सुन रहे हैं डिप्टी कमिश्नर मिस्टर किंग की लिखी कहानी शिमला का बंगला। लीजिए सुनिए कहानी का पहला भाग। ये अंग्रेजों के जमाने का सच्चा वाक्य है। उन दिनों हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी। अंग्रेजों ने गर्मी के मौसम के लिए एक शहर बसाया था शिमला। हर साल ग्रीष्म ऋतु में दिल्ली से सभी बड़े अफसर शिमला आ जाते थे। तमाम सरकारी काम वहीं से होता था। इनमें अंग्रेज और हिंदुस्तानी दोनों ही अफसर होते थे। अलबत्ता उन दिनों शिमला की माल रोड पर हिंदुस्तानियों को चलने की इजाजत नहीं थी। यह किस्सा सन 1937 का है। शिमला के अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर मिस्टर किंग ने इस घटना का जिक्र शिमला गजेटियर में विस्तार के साथ किया है। उन्होंने गजेटियर में लिखा है, यह मेरी जिंदगी का अजीबोगरीब वाकया ही नहीं बल्कि सनसनीखेज तजुर्बा भी है। अगर ये मुकदमा मेरी मौजूदगी में न चला होता तो मैं मरते दम तक इस बात पर यकीन ही नहीं कर सकता था। फिर क्यों न इस घटना का जिक्र मेरे पिता ने चश्मदीद के तौर पर ही क्यों न मुझे सुनाया होता। उस दिन सुबह बहुत ज्यादा सर्दी थी। हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। रगों में खून जमता हुआ सा महसूस हो रहा था। एक अफसर गर्म सूट पहने दफ्तर पहुंचा। इसके बावजूद वो कांप रहा था। साथ ही वो सख्त परेशान भी नजर आ रहा था। वो अपनी सीट पर बैठने के बजाय सीधे अपने विभाग के अंडर सेक्रेटरी के कमरे में जा पहुंचा। अंडर सेक्रेटरी एक अंग्रेज था। अंडर सेक्रेटरी ने उस हिंदुस्तानी अफसर से पूछा, आज सर्दी बहुत ज्यादा है, इस वजह से तुम्हारा कांपना तो समझ में आता है, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो?
मैं वाकई बहुत सख्त परेशान हूं सर, मेरी जान को खतरा है,
उस अफसर ने सहमी हुई सी आवाज में जवाब दिया। मैं तुम्हारी बात नहीं समझ सका, साफ साफ बताओ आखिर मामला क्या है? अंग्रेज अफसर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पहले तुम आराम से बैठ जाओ।
सर, मैं ये गुजारिश करने आया हूँ कि मुझे रहने के लिए जो सरकारी बंगला मिला है उसे बदल दिया जाए, वहां मेरी जान को खतरा है,
अफसर ने खौफ भरी आवाज में कहा।
अगर मुझे कोई दूसरा बंगला न मिला तो मैं अपने पैसों से कोई दूसरा मकान किराए पर ले लूंगा।
क्या हुआ, क्या वहां खूंखार पहाड़ी जानवरों का खतरा है? अंडर सेक्रेटरी ने उस अफसर की तरफ देखते हुए कहा। सर्दी के मौसम में जंगली जानवर रिहायशी इलाकों की तरफ आ ही जाते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारा बंगला कहां पर है?
कैथू के करीब है सर, लेकिन मसला खूंखार जानवरों का नहीं है।
दरअसल, इतना कहते कहते उस अफसर की आवाज हलक में फंस कर रह गई। इसके आगे वो कुछ न कह सका। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। खुलकर बताओ ना अपनी बात, अंडर सेक्रेटरी ने कहा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, उस अफसर ने बताना शुरू किया।
सर, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं एक हफ्ते पहले ही यहां ट्रांसफर होकर आया हूं। उस बंगले में पहले तीन दिन तो बड़े ही आराम से गुजरे। चौथे दिन मैंने पत्नी को खत लिखा कि अभी शिमला में बहुत सर्दी है, 2 महीने बाद तुमको और बच्चों को आकर ले जाऊंगा।
वो अफसर खौफ भरे लहजे में इतना कहने के बाद खामोश हो गया। फिर दाएं बाएं देखते हुए थोड़ा आगे झुक गया। फिर जरा धीमी आवाज में आगे बताना शुरू किया। मैं चिट्ठी पोस्ट करके बंगले पर पहुंचा ही था, तभी मुझे किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी,
तुमने बच्चों को न बुलाकर अच्छा ही किया, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे बच्चे भी परेशान हों।
सर, मैं चारों तरफ देखने लगा, ये आवाज कहां से आ रही है? तभी मैंने एक साया देखा। वो साया मुझे हरकत करता हुआ सा महसूस हुआ।
मगर देखते ही देखते वो साया गायब हो गया। मैंने इसे अपना वहम समझा और इस बात को ज्यादा तवज्जो न दी। अगली रात फिर मुझे उसी लड़की की आवाज आई। वो कह रही थी,
तुमने जवाब नहीं दिया, तुम अपने बच्चों को यहां कभी मत लाना।
इतना कहने के बाद उस अफसर ने ध्यान से अंडर सेक्रेटरी की तरफ देखा, फिर घिघियाते हुए बोला,
सर आप मुझे कोई दूसरा बंगला अलॉट कर दीजिए, मैं वहां किसी भी हाल में नहीं रहना चाहता हूं।
अंडर सेक्रेटरी ने मुस्कुराते हुए उस अफसर की तरफ देखा, फिर मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा, सामने की खिड़की देख रहे हो, जैसे उस खिड़की के शीशे पर बर्फ जम गई है वैसी ही बर्फ तुम्हारी अक्ल पर भी जम गई है। इतना पढ़ लिख कर भी ऐसी अंधविश्वास भरी बातें करते हो, जाओ अपनी सीट पर बैठकर काम करो, बेवजह मेरा वक्त बर्बाद किया।
डरा सहमा सा वो अफसर अपनी सीट पर आकर खामोशी से बैठ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे यूं परेशान देखकर दफ्तर का एक दोस्त उसके पास आ बैठा और परेशानी की वजह पूछने लगा। उसने उसे भी सारा हाल कह सुनाया। दोस्त ने उसे सलाह दी कि वो यह मामला स्टेट ऑफिसर के पास ले जाए, वो जरूर उसकी बात सुनेंगे और उसे दूसरा बंगला अलॉट कर देंगे। स्टेट ऑफिसर ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी, लेकिन फिर मजाक उड़ाने लगा कि भूत भूत कुछ नहीं होते हैं, बेवजह परेशान मत हो। हर तरफ से नाउम्मीद होकर उस अफसर ने शहर में एक मकान किराए पर ले लिया और उसी दिन उस बंगले को खाली कर दिया। इसके बाद वो बंगला खाली ही पड़ा रहा। कुछ दिनों बाद सभी सरकारी दफ्तर दिल्ली शिफ्ट हो गए। इस तरह से ये बात आई गई हो गई। अगले साल गर्मी का मौसम आते ही सभी सरकारी दफ्तर दिल्ली से शिमला आ गए। तमाम अंग्रेज और हिंदुस्तानी अफसर भी शिमला आ गए। इस बार एक और अफसर को वो बंगला अलॉट हुआ। पहली रात गुजारने के बाद ही अगले दिन दफ्तर आते ही वो अफसर सीधे स्टेट ऑफिसर से जाकर मिला और उससे कहने लगा,
सर मुझे कैथू का जो बंगला अलॉट किया गया है वो यहाँ से बहुत दूर है, मुझे आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, मुझे ऑफिस के आसपास ही कोई बंगला अलॉट कर दिया जाए बेहतर रहेगा।
उसकी बात सुनकर स्टेट ऑफिसर ने हंसते हुए कहा,
क्या तुम्हें भी वहां कोई नजर आ गया?
स्टेट ऑफिसर के मुंह से ये बात सुनते ही उस अफसर के मुंह से अचानक ही निकला, आपको कैसे पता चला सर, क्या आप भी वहां रह चुके हैं?
स्टेट ऑफिसर ने चिढ़ते हुए कहा, तुम बंगला खाली कर दो, मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं इसे किसी बहादुर अफसर को ही अलॉट करूंगा।
उस अफसर ने भी उसी दिन बंगला खाली कर दिया। इसके बाद वो बंगला कई हफ्ते खाली पड़ा रहा। 3 हफ्ते बाद एक अफसर का तबादला शिमला हो गया। स्टेट ऑफिसर को वो अफसर बहादुर नजर आया। उसने वो खूबसूरत बंगला उसे अलॉट कर दिया। वो अफसर अपनी फैमिली के साथ आया था। वो उसी दिन अपने बीवी बच्चों सहित बंगले में रहने के लिए चला गया। तीसरे ही दिन उस अफसर ने भी बड़ी खामोशी के साथ उस बंगले को खाली कर दिया। अब ये बात तमाम अफसरों में आम हो गई। कोई भी अफसर उस बंगले में रहने को तैयार नहीं था। स्टेट ऑफिसर इसे महज अंधविश्वास मान रहा था। एक दिन स्टेट ऑफिसर को जाने क्या सूझी कि शनिवार की रात अचानक ही अपने 2 और दोस्तों के साथ कैथू के उस खूबसूरत बंगले में जा पहुंचा। हर तरफ रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। पहाड़ों से टकरा कर हवा अजीब सा डरावना शोर पैदा कर रही थी। स्टेट ऑफिसर ने ड्राइंग रूम में दोस्तों के साथ महफिल सजा ली। जाम पर जाम चलते रहे और ताश की गड्डियां फेंटी जाती रहीं। वो एक नौकर भी अपने साथ लाए थे। आधी रात से ज्यादा गुजर गई थी। अचानक उन्हें एक लड़की की खनकती हुई सी आवाज सुनाई दी,
क्या तुम भी डरकर भाग जाओगे?
फिर आगे क्या होता है इस कहानी में,
ये सुनिए अगले भाग में। सुनते रहिए गाथा रूह वही रूप नया। गाथा में आप सुन रहे थे डिप्टी कमिश्नर मिस्टर किंग की लिखी कहानी शिमला का बंगला। आपने सुना इस कहानी का पहला भाग। कहानी का संपादन कुमार रहमान का। गाथा में इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत किया शेफाली कपूर ने।